लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों के साथ संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 26 जुलाई को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो। Il Vangelo di questa domenica corrisponde agli ultimi versetti del capitolo che Matteo dedica alle parabole del Regno dei Cieli. Il brano comprende tre parabole appena abbozzate e brevissime.
Atti priye bhayo em behno suprabhat. Is ravivar ka susamachar paath us adhyay ke antim padon se liya gaya hai jinko sant mati swarg rajya ke drishtant ko samarpit karte hain. पाठ में तीन दृष्टांत हैं, जो केवल ढांचे के समान और बहुत छोटे हैं, छिपा खजाना, मूल्यवान मोती और जाल का दृष्टांत। संत पापा ने कहा, मैं प्रथम दो पर चिंतन करूंगा, जिनमें स्वर्ग के राज्य की तुलना दो मूल्यवान चीजों से की गई है, अर्थात खेत में छिपा खजाना और बहुमूल्य मोती। खजाना और मोती पाने वाले व्यक्ति और व्यापारी की प्रतिक्रिया करीब एक समान है, जो सब कुछ को बेच देते हैं ताकि अपने पसंद के उस खजाने को खरीद सकें। इन दो दृष्टांतों द्वारा यीशु हमसे स्वर्ग के राज्य के निर्माण में शामिल होने का प्रस्ताव रखते हैं। वे ख्रिस्ते जीवन की विशेषता को प्रस्तुत करते हैं, जो स्वर्ग राज्य का जीवन है। जो लोग स्वर्ग राज्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, वे सहर्ष सब कुछ को दांव पर लगा देते हैं, वे साहसी लोग हैं। वास्तव में इन दोनों दृष्टांतों में व्यक्ति और व्यापारी अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं, इस तरह वे भौतिक सुरक्षा का त्याग करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग राज्य का निर्माण न केवल ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, बल्कि उसे प्राप्त करने हेतु मनुष्यों को सक्रिय अभिलाषा की भी जरूरत है। ईश्वर की कृपा सब कुछ कर सकती है, केवल हमें उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संत पापा ने कहा,
I gesti di quell'uomo e del mercante che vanno in cerca privandosi dei propri beni per comprare realtà più preziose sono gesti decisi, sono gesti radicali.
उस व्यक्ति और व्यापारी का मनोभाव जो अधिक मूल्यवान खजाने की खोज करते हैं और अपनी सारी चीजों को छोड़ देते हैं, यह निर्णयात्मक और मूल मनोभाव है। इसके अतिरिक्त ये दोनों ही मनोभाव आनंद से आते हैं, क्योंकि दोनों ने खजाना प्राप्त किया है। संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, हम सुसमाचार के इन दोनों छवियों के मनोभाव को धारण करने के लिए बुलाए जाते हैं, ताकि हम भी स्वर्ग राज्य को खोजने वाले सच्चे बेचैन व्यक्ति बन सकें। यह हमारी सांसारिक सुरक्षा के भारी बोझ, संपत्ति की लोलुपता, लाभ और सत्ता की प्यास एवं सिर्फ अपनी चिंता करने आदि को छोड़ना है, जो हमें स्वर्ग राज्य की खोज और निर्माण करने से रोकते हैं। संत पापा ने वर्तमान स्थिति पर गौर करते हुए कहा,
I nostri giorni, tutti lo sappiamo, la vita di alcuni può risultare mediocre e spenta perché probabilmente non sono andati alla ricerca di un vero tesoro.
हमारे समय में जिसके प्रति हम सभी सचेत हैं, कुछ लोगों का जीवन औसत दर्जे के साथ और आलसी रूप में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वे सच्चे खजाने की खोज नहीं करते। वे आकर्षक किंतु क्षणभंगुर वस्तुओं से संतुष्ट रहते, जिसकी तेज रोशनी भ्रमित करती है, क्योंकि वह अंधकार को स्थान देती है, जबकि स्वर्ग राज्य का प्रकाश आतिशबाजी के समान सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन भर हमारे साथ चलता है।
Il regno dei cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo. È il contrario di una vita banale. Esso è un tesoro che rinnova la vita tutti i giorni e la dilata verso orizzonti più vasti.
स्वर्ग का राज्य दुनिया द्वारा प्रदान की जाने वाले सतही चीजों के विपरीत होता है। यह आलसी जीवन से अलग एक खजाना है, जो हर दिन जीवन को नवीन बनाता और विस्तृत क्षितिज की ओर ले चलता है। जिन्होंने इस खजाने को पाया है, उनका हृदय रचनात्मक और जिज्ञासु होता है। वह नकल नहीं करता, बल्कि खोज करता, नए रास्तों का पता लगाता और उस पर आगे बढ़ता है, जो उसे ईश्वर, पड़ोसियों एवं अपने आप से सच्चा प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। उन लोगों का चिन्ह जो स्वर्ग राज्य के रास्ते पर चलते हैं, वह है रचनात्मकता, हमेशा अधिक करने की अभिलाषा, रचनात्मकता जो जीवन लेता और जीवन देता है, हमेशा देता और कई तरह से जीवन समर्पित करने का रास्ता खोजता है। यीशु जो एक छिपे खजाने और बहुमूल्य मोती हैं, दुनिया के सभी आनंद से बढ़कर हैं। जीवन का अर्थ खोजने का आनंद, पौत्रता के साहस के लिए अपने आप को समर्पित करने का आनंद, यह जीवन का अर्थ खोजने का आनंद है, पौत्रता के साहस के लिए अपने आप को समर्पित करने का आनंद। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना की कि वे हमें स्वर्ग राज्य को प्रत्येक दिन खोजने में मदद दें, ताकि ईश्वर का प्रेम जो यीशु में प्रकट हुआ है, हमारे शब्दों एवं व्यवहार में प्रकट हो सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने यीशु के नाना नानी संत अन्ना और संत जोआकिम की याद करते हुए कहा, यीशु के नाना नानी संत अन्ना और संत जोआकिम के पर्व दिवस पर मैं सभी युवाओं को निमंत्रण देना चाहूंगा कि वे बुजुर्गों के प्रति कोमलता का व्यवहार करें, विशेषकर जो अपने घरों में अकेले हैं, जिन्होंने कई महीनों से अपने प्रियजनों को नहीं देखा है। संत पापा ने युवाओं को संबोधित कर कहा,
Ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli. Usate la fantasia dell'amore.
Ye sabhi bujurg aapke nana nani hain. Unhe akele na choden. Unse prem pradarshit karein. Prem pradarshit karne ke raston ki khoj karein. Unse phone dwara sampark karein. Video call karein. Sandesh bhejein. Unki baaton ko sunein. Aur jahan sambhav hai, unse mulaqat karne jaein. वे आपकी जड़ें हैं। एक उखाड़ा हुआ पेड़ कभी विकसित नहीं हो सकता, ना ही खिल सकता है और फल ला सकता है। यही कारण है कि अपने मूल से जुड़े रहना इतना महत्वपूर्ण है। अतः संत पापा ने प्रत्येक जन का आह्वान किया कि हम ताली बजाकर अपने दादा दादी के लिए अपना स्नेह प्रकट करें। तत्पश्चात संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। उन्होंने खासकर ब्राजील के फ्रांका के विश्वासियों, मोदेरना मोनांतोला महाधर्म प्रांत तथा रोम स्थित संत फबियानो एवं बेनांसियो के युवाओं का अभिवादन किया। और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Nile aasman ke paar jayenge. Nile aasman ke paar jayenge.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया के वार्षिक पंचांग अनुसार 26 जुलाई वर्ष का 16वां रविवार है। इस दिन पूजन विधि के लिए चयनित सुसमाचार पाठ संत मत्ती से लिया गया है, जो स्वर्ग राज्य के बारे में है। संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर स्वर्ग राज्य के लिए अपने को तैयार करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, स्वर्ग का राज्य दुनिया को प्रदान करने वाली शानदार चीजों के विपरीत है, एक कुंठित जीवन के विपरीत है। यह एक खजाना है जो रोजमर्रा की जिंदगी को नवीनीकृत करता है और इसे व्यापक क्षितिज की ओर ले जाता है। इसी दिन कलीसिया ने येसु के नाना नानी संत जोवाकिम और संत अन्ना का त्योहार मनाया। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी युवाओं को बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सहानुभूति प्रकट करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, संत जोवाकिम और संत अन्ना येसु के नाना नानी के पर्व के अवसर पर मैं युवा लोगों को अपने घरों या वृद्धों के निवास गृहों में रहने वाले बुजुर्गों, विशेषकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सहानुभूति प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रिय युवाओं, प्रत्येक बुजुर्ग आपके दादा और दादी हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 26 जुलाई को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। इसके उपरांत उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष के निपटारे के लिए तथा कथित संपर्क समूह द्वारा किए गए संघर्ष विराम समझौते पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि डॉनबॉस क्षेत्र में संबंधित एक नए युद्ध विराम का हाल ही में मिन्स्क में त्रिपक्षीय संपर्क समूह के सदस्यों ने फैसला किया। समझौते का उद्देश्य सामंजस्य लाना एवं डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और यूक्रेनी सशस्त्र बलों के बीच चल रहे संघर्ष में एक मौजूदा युद्ध विराम पर नियंत्रण के अतिरिक्त उपायों की मंजूरी देना है। यह समझौता बुधवार को बेलारूसियन की राजधानी मिन्स्क में किया गया और सोमवार 27 जुलाई से लागू होने वाला है। संत पापा फ्रांसिस ने पार्टियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सहमति दी गई है उसे आखिरकार एक प्रभावी निरस्त्रीकरण और खान निष्कासी प्रक्रिया सहित व्यवहार में लाया जाएगा। केवल इस तरह से विश्वास का पुनर्निर्माण और सुलह के लिए नींव रखना संभव होगा, जो लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और वे लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा में हैं। 2014 के शरद ऋतु के बाद पूर्वी यूक्रेन में समाधान के लिए संपर्क समूह ने डोनबास में 20 से अधिक संघर्ष विराम की घोषणा की है। समूह के सदस्यों ने डोनबास में जुलाई 2019 से अनिश्चितकालीन युद्ध विराम की घोषणा की, हालांकि संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहा। रूसी समर्थित अलगाववादी ताकतों और यूक्रेनी सेना के बीच पूर्वी यूक्रेन में हिंसा में अप्रैल 2014 के बाद से लगभग 24,000 लोग मारे गए और लगभग 1.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। उधर एनजीओ अलार्म के अनुसार माल्टा के पास कम से कम 95 लोगों के डूबने का गंभीर खतरा है। कुछ लोग कथित तौर पर समुद्र में कूद गए हैं क्योंकि उनकी नाव पानी से भर गई है। रविवार को दर्ज एक रिपोर्ट में अलार्म फोन ने कहा कि नाव पर सवार लोग नाव से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग भरे हैं। यद्यपि माल्टा ने अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के कारण शरण चाहने वालों के लिए अपने बंदरगाहों को बंद कर दिया। हाल के हफ्तों में गर्म मौसम और शांत समुद्र के कारण भूमध्य सागर पार करने वाले नाव दिखाई दे रहे हैं। माल्टा जैसे छोटे द्वीप में प्रवासी निरोध केंद्र में प्रवासियों की संख्या अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा है। माल्टा ने हाल ही में तुर्की के साथ मिलकर उत्तरी अफ्रीका छोड़ने वाले प्रवासियों के प्रवाह को रोकने की कोशिश की है। इसी बीच भूमध्य सागर में इटली के द्वीप लंपेदूसा में लीबिया से 250 से अधिक प्रवासी पिछले कुछ दिनों में आ गए हैं। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार से रविवार तक लीबिया से 1000 से अधिक प्रवासियों का एक बड़ा समूह द्वीप में पहुंच गया है। नए आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि तुर्की कोस्ट गार्ड ने इस महीने एजियन समुद्र में लगभग 1000 शरणार्थियों को बचाया था। उधर स्पेन और कई अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। संक्रमणों की व्यापक दूसरी लहर के अधिकारियों द्वारा ताजा चेतावनी के बीच फैसले किए जा रहे हैं। स्पेन के कातालोनिया क्षेत्र ने कोरोना वायरस संक्रमण की इस नई लहर के बाद 2 सप्ताह के लिए अपनी नाइट लाइफ यानी नाइट क्लब रात में होने वाले सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बाहर के अधिकारी भी कोविड-19 मामलों में वृद्धि की घोषणा कर रहे हैं। स्पेन के कुछ सबसे प्रिय गर्मियों के स्थान जैसे नाइट क्लब, बार, समुद्र तट कोरोना वायरस हॉटस्पॉट में कथित तौर पर बदल जाने के बाद नए प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। हाल के महीनों में यूरोपीय देशों में स्पेन ने पूरे देश में लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया था। स्पेन को अन्य यूरोपीय देशों से चेतावनी भी मिली है। ब्रिटेन ने कहा कि स्पेन से लौटने वाले सभी लोगों को दूसरों से अलग रहना होगा। नॉर्वे में भी स्पेन जैसे कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि क्षेत्रों से लौटने वाले लोगों के लिए समान नियम है। फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी गई है। बेल्जियम ने कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए फिर से खोलने की गति को धीमा कर दिया है। इटली बाल्कन क्षेत्र से कई आयातित मामलों के बाद रोमानिया और बुल्गारिया से आए यात्रियों को 2 सप्ताह के लिए संगरोध में रख रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को फिर से खोलना नहीं है, अन्यथा यह दुनिया भर में उच्च मृत्यु दर को जन्म दे सकती है, खासकर गरीब देशों में जो पहले से ही भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 16.2 मिलियन से अधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 6,48,913 लोगों की मौत दर्ज की गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।